सूरत का एंड बनता है आयत 109 में, अल्लाह के कलेमात का शुमार नामुमकिन है। قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي। अगर तुम अपने रब के कलेमात लिखना चाहो तो तुम्हारे कलेमात पूरे हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे रब की बात नहीं पूरी हो गई, और चाहे तुम इस जैसी और मदद भी ले। ये मज़मून सूरह लुकमान के एंड में और भी खुल के सामने आता है। मुराद क्या है कि अल्लाह की तारीफ़ें मुमकिन नहीं। आज अस्माउल हुस्ना में अगर 200-300 नाम है ना, तो आप देखेंगे कि आगे आगे वाले दौर में और नाम डिस्कवर हो रहे हैं। जैसे एनर्जी एक्सपोज हो रही है ना, पहले दूसरी एनर्जी थी, बिजली थी, गैस थी, फिर एटॉमिक एनर्जी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी, आज मेगा फुलां फुलां। इसी तरह हर एक के अंदर से अल्लाह ताला की तारीफ़ें और खुलती आ रही हैं। तो बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह, हम तेरी उतनी सना बयान करते हैं जिसके तू लायक है। और आखिर में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का ऐलान है, शिर्क का सदेबाप, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आप देखिए कि सूरत बनी इसराइल में भी सुबहान अल्लाजी के साथ अल्लाह के नबी की क्या सिफत थी, ले गया जो अपने बंदे को रातों रात। फिर सूरत कहफ के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, और अब इस सूरत के एंड पे अल्लाह के नबी से कहलवाया जा रहा है, देखो मैं इसके सिवा कुछ नहीं सिवाय एक बशर हूँ तुम ही जैसा। तो क्या मतलब आम बशर हूँ? नहीं, यू हाई लिया यानी नफ्से सल्लम इंसानों में सबसे आला। वही आप पे नाजिल हुई, किसी और पे नाजिल नहीं हुई। और पैगाम क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। बस जो कोई मुलाकात की उम्मीद रखे अपने रब से और अमल भी सवाले करे और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करे। यानी सिर्फ एक आयत है जिसमें नफ्से सल्लम का मुकाम, अल्लाह ताला की शान और ज़िंदगी का मकसद बता दिया। तो सारी सूरत का हफ आपके मेरे लिए अमल की एक खूबसूरत सी तस्वीर है कि अगर आपकी ज़िंदगी भी ऐसी बन जाए जैसी अल्लाह चाहता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए खैर देंगे। उसके बाद एक वो खूबसूरत सूरत है, वाहिद सूरत कुरान की, जिसका नाम एक औरत के नाम पे। पीछे सूरत निसा तो पड़ी थी, लेकिन वो तो एक जनरल बात थी। और लिख लीजिए कि हज़रत मरियम वो वाहिद खातून है जिनका नाम कुरान में है। क्या बात है उनकी! 98 आयात हैं इसमें इनकी, और पूरी स्टोरी है। आपको ऐसे अभी लगेगा जैसे सूरत आले इमरान की तस्गीर है, जो मौजू वहाँ छेड़े गए थे इधर उनके हिंट्स मिलते हैं। और शुरू से देख लें तो पहली 5 आयात, हज़रत ज़करिया की रिक्कत आमेज़ दुआ, ज़िक्र रहमती रब्बी का अब्दहू ज़करिया, दुआओं से भरी हुई सूरत है। और ज़करिया अलैहिस्सलाम पर रब की रहमत क्या थी कि अल्लाह ने इनको नबूवत दी और बुढ़ापे में औलाद दी। इस नादा रब्बहु निदान खफिया, जब उन्होंने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा, कहाँ पुकारा? सूरत आले इमरान याद कीजिए, हज़रत मरियम के पास बिन मौसम के फल देखे तो इनको ख्याल आ गया कि जो रब बिन मौसम के फल मरियम को दे सकता है तो मुझे बिन मौसम की औलाद भी दे सकता है। अब ज़रा अंदाज़ देखिए क्या कहते हैं, काल रब्बी, कहने लगे मेरे रब, इन्नी वहन अल अस्मु मिन्नी, मेरी तो हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गईं, वश्ताल रासु शैबा, और मेरा सर शोले मारने लगा यानी सफ़ेद हो गया, बुढ़ापे की तरफ इशारा है। लेकिन वलम अकुम बि दुआइका रब्बी शकिया, और ऐ मेरे रब, तुझसे मांग कर कभी मैं मायूस नहीं हुआ। ये जुमला देखिए ना, तो इसमें आपको आजिज़ी और इनकिसारी दिखेगी, फिर दुआ मांगते हुए अल्लाह ताला से हुस्ने ज़न दिखेगा, पूरे यकीन से दुआ मांगना दिखेगा। तो क्या पता चला कि दुआ का एक अदब आजिज़ी और इनकिसारी है। बस लोग तो अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते हैं जैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है किसी होटल में, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, और ज़रा डिले हो जाए ना तो गुस्सा करते हैं, कब से ऑर्डर किया हुआ है आप दे ही नहीं रहे। याद रखिए, आपका मेरा बस एक ही नाम है, और वो क्या है? इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ करे तो अल्लाह से कतई तौर पर मांगे, यानी यकीन से मांगे, उदुल्लाह वअंतुम मूक़िनून बिलइजाबा, और ये ना कहे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता फरमा, क्योंकि अल्लाह ताला पर कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है। सही बुखारी की रवायत है 6338। हमारा दौरे कुरान, हर साल हम एक दौरे कुरान जो ऑफ़र करते हैं मोस्टली, तो उसमें दौरे कुरान 2022 DQ22 जो है उसका थीम दुआ की ताकत थी। आप में से किसी को भी अभी तक अपनी दुआओं के ना कबूल होने की वजह समझ नहीं आई या क्या करें, तो उसमें तकरीबन देखिए कि यानी ऑलमोस्ट 35 डेज़ में सिर्फ दुआ 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 और दुआ। आप उसको रमज़ान के बाद या जब भी इसके बाद आपको फुर्सत मिले सुनना शुरू कर दें, एक बहुत सारों के किबले दुरुस्त हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद देखिए कि आयत नंबर 6 में औलाद के पसंदीदा होने के लिए दुआ करते हैं हज़रत ज़करिया, यरी सुनी व यरी सुमिनाली याकूबा व जल हो रब्बी रदिया। क्या पता चला कि जब भी औलाद की दुआ करें ना, तो साथ ये भी दुआ किया करें कि अल्लाह वो लोगों का प्यारा भी हो, अल्लाह से भी मोहब्बत बंदों से भी, अल्लाह को भी मोहब्बत और बंदों को भी मोहब्बत। है मुराद है कि बहुत बाखलाक हो, मोहब्बत ऐसे नहीं की जाती और मोहब्बत ऐसे ली भी नहीं जाती। फिर आयत 7 से 11 में देखिए, अल्लाह से मांगने वाले महरूम नहीं रहते। बुढ़ापे में मांगा था, अल्लाह ने कैसे कहा, या जकरिया इन्ना नुबशिरु कभी गुलाम, ए जकरिया हम आपको खुशखबरी देते हैं कैसे बच्चे की कि जिसका नाम याह्या होगा। नोट कीजिएगा, बच्चे का नाम तक अल्लाह ने रखा और याह्या जीने वाला हयन से, लंबी उम्र पाने की तसल्ली भी है इसमें, और साथ कह दिया ये यूनिक नाम है, लम नजल्लहु मिन कबलु समिया। आज भी लोग कहते हैं नया नाम बताइए ना, अच्छा भी अब्दुल्ला रख ले, नहीं ये तो बड़ा कॉमन है, अच्छा मरियम, अच्छा आयशा, नहीं। तो यहाँ आपको हज़रत याह्या की अजमत दिखेगी आयत 12 से 15 में, और वो क्या है कि अल्लाह ने उनका नाम भी रखा और नया नाम रखा, और साथ ही अब हज़रत याह्या की खूबियाँ, याह्या खुज़िल किताब अभी कौवा, ए याह्या किताब को कुव्वत से थाम लीजिए। और हमने उनको बिल्कुल बचपन में ही हुक्म भी दे दिया, जवानी में भी दे दिया। मुराद यह कि अल्लाह ने बुढ़ापे में ज़करिया को औलाद तो क्या दी, ऐसी खूबियों वाली औलाद दी कि अक्सर लोग जब इन आयात की तफसीर सुनते हैं तो नियत कर लेते हैं कि अब जो बच्चा भी फैमिली में आएगा उसका नाम याह्या रखेंगे, और अल्लाह उन बच्चों को वाकई हज़रत याह्या जैसी खूबियों वाला बना दे। हनाना मिल्ला दुन्ना ज़कातन काना तकिया वरम भी वाली दई ही वलम यकुन जब बारह नसीह। यानी एक एक खूबी वो है कि जिसके लिए आज माँ बाप उम्रा करते हैं, हज करने जाते हैं कि बच्चे के लिए ज़रा मांगते हैं कि अल्लाह इसका दिल नरम कर दे, अल्लाह इसके दिल में हमारी मोहब्बत डाल दे, अल्लाह इसकी नज़रें पाक हो जाएं, इसको ये कर दे वो कर दे। तो अल्लाह ने हज़रत याह्या की सूरत में हज़रत ज़करिया की दुआ सुनी। क्यों सुनी? नंबर एक, आगे हम पढ़ेंगे एक जगह आएगा तो कोट कराऊंगी, गालिबन सूरत स्वात में आता है कि मियाँ बीवी दोनों नेकी के कामों में भागते थे, यु सारी उनफिल खैरात, फिर हमने उनको औलाद दी। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम अपने काम करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे करेंगे, हालांकि हकीकत पता है कि आप अल्लाह के रास्ते के अंदर निकलते हैं ना, आप अल्लाह के काम, यानी ये कामों से यानी कि घर छोड़ के जाना, मुराद ये कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे अल्लाह का दीन आ जाता है ना, आपके बाकी सारे मामलात को अल्लाह ताला अपने हाथ में ले लेते हैं। बहरहाल, अब आगे से हज़रत मरियम का किस्सा शुरू होता है जिस नाम पे ये सूरत है, आयत 16 से 26 में। और मैं यहाँ अक्सर लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आपके घरों में कोई क्रिश्चियन हैं, इर्द गिर्द हैं, बाहर के मुल्कों में तो बहुत सारे मौके हैं दावा के, अल्हम्दुलिल्लाह, ये किस्सा कुरान का जो अभी शुरू करने लगे हैं, आगे तक जहाँ तक हज़रत ईसा का ताल्लुक है, आप इसका तर्जमा पढ़कर सुनाइए। कुरान के तर्जमे में आपकी मेरी बातों से ज़्यादा तासीर है, इसलिए अल्लाह ताला यहाँ किस्सा बयान करते हैं। वज़कुर फ़िल किताबी मरियम, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कीजिए जब वो एक दूर की जगह पे चली गई और बीच में एक हिजाब रख लिया, फिर हमने उनके पास अपने फरिश्ते को भेजा एक बशर की सूरत में, कहने लगी मैं रहमान की पनाह में आती हूँ तुझसे अगर तू नेक है। वो कहने लगा कि मैं तो रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे एक पाक नेक बेटा देकर आऊँ। कहने लगी मेरा बेटा कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया और न मैं बगी, यानी मैं बदकार भी नहीं हूँ। कहने लगे बेशक इसी तरह आपका रब करेगा और उसके लिए बहुत आसान है, और ताकि वो इसको निशानी बनाए, क्या निशानी के बिन बाप के भी वो बच्चा पैदा कर सकता है और रहमत है हमारी तरफ से, और ये काम है जो अल्लाह ने करवा के लेना है। ये वो वाक़ा है जो पीछे पड़ा कि हज़रत मरियम मेहराब में इबादत करती थी तो फरिश्ता आ गया, ये थी वो आया जिसकी वजह से मरियम चुनी गई। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि आज हजरत मरियम के नाम से जोड़ने वाला पूरा एक कह लीजिए कि स्कूल ऑफ थॉट भी है। लेकिन क्या आज बच्चियों में इतनी हया है? तन्हाई में एक मर्द को देख के घबरा रही हैं? यानी क्रिश्चियनिटी क्या आज सारे अकायद और नज़रियात पे पानी पड़ जाता है सिर्फ इन एक चंद आयात से? क्या आज की एक बच्ची हजरत मरियम या उनके बेटे से नस्बत जोड़ने के बाद इतनी बाहया है? ये बिल्कुल ऐसी जैसे आज मुसलमान भी अपने नबी और उनकी बीवियाँ और उनकी बेटियों से नस्बत तो जोड़ते हैं लेकिन मैच नहीं होते। तो हजरत मरियम के अंदर हया थी, फरिश्ते ने खुशखबरी दी, अल्लाह ने जैसे चाहा वो हामिला हो गई, फहमलत हो, फिर उसने उसको उठा लिया, फिर उसको लेके चलती गई दूर की जगह में। यानी जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया फिर उनके पास दर्दे ज़ेह आ गया। देखिए कुरान कैसे किस्सों को बयान करता है, ऐसे लगता है कि आपके सामने पूरी एक तस्वीर खुल गई कि हज़रत मरियम बच्चे को पैदा करने के लिए दूर एक जगह चली गई खजूर के तने के नीचे। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, कहने की हाय काश मैं इससे पहले ही मर जाती, वकुंतु नस्यम मनसिया, भूली बिसरी होती। क्यों भाई? पहली बात है तकलीफ़ की वजह से तो हर औरत ही उस वक्त कहती होगी ऐसे। दूसरी बात, हजरत मरियम को गम ये था कि इस बच्चे को लेकर किधर जाऊंगी, और इसमें बहुत सारे असबाक हैं जो ऐसे वक्तों में औरतों को अमल के लिए बताए जा सकते हैं कि कैसे फरिश्ता क्या कह रहा है। फनादा हमिन तहतिहा, फिर पुकारा गया उनको उनके नीचे से कि गम ना करो, बेशक तेरा रब, यानी जो तेरा रब है जिसने तेरे लिए यहाँ पानी का एक चश्मा बहा दिया, फिर इस खजूर के तना को हिला, वहुज़ी इलैक, इसको अपनी तरफ हिला और तेरे ऊपर ये तुसाक तलई की रोता बन जनिया, गीली खजूरें वो पेश करेगा, यानी दरख्त हिलाओगी तो गिरेंगे। यानी ये सारी मूवमेंट्स उस वक्त मददगार भी थी। देखिए हजरत मरियम के पास ना माँ थी ना सास, ना कोई नर्स थी ना हॉस्पिटल की कंस्टडी थी। अल्लाह कैसे उनकी ऐसे नाजुक लम्हों में मदद कर रहे हैं? जब अल्लाह किसी पे आजमाइश डालता है और वो उसको कबूल भी कर लेता है तो अल्लाह की मदद ऐसे ही आती है। तो औरत की सबसे कीमती चीज़ इज्जत है, और अम्बिया की भी आजमाइशें हुई, जैसे मछली के पेट में डाल दिए गए, कई कई साल की बीमारी आई। हजरत मरियम जो नबिया तो नहीं थी लेकिन एक नबी या आने वाले नबी की माँ थी, अल्लाह उनको भी आजमाइशों में डाले और उनकी आजमाइश इज्जत की आजमाइश है। इसीलिए फिर जब ये बच्चे की पैदाइश हो रही है, फकुली वशरबी वकर्री आईना, कहा इसको खाओ भी और पियो भी और अपनी आंखों को ठंडी करो। हाँ जब किसी बशर को देखो तो फकुली इन्नी नजर तुले रहमानी सोमा, बेशक मैंने तो रहमान से नजर मान ली है रोजे की। फलन उकल्ली मल याओ मिनसिया, आज के दिन मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूंगी। ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। अब सूरह बकरा 183 में जब रोज़े का तस्करा पढ़ते सुनते हैं तो क्या कहते हैं? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, वहाँ लफ्ज़ है सियाम, यहाँ क्या आ रहा है? सौम। फ़र्क क्या है किसी को मालूम है? देखिए सियाम फर्जी रोज़ा है, खाना पीना और उन चीज़ों से रुकना जिससे अल्लाह ने रोका है, यानी शरई पाबंदियों का नाम है। जबकि सौम जो है ना ये उसकी स्पिरिचुअलिटी रूहानियत। यहाँ क्या कह रही हैं? मैं किसी से बात नहीं करूँगी, हमने अपने सयाम को सौम में बदलना है। रोज़ा रखकर झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी। हत्ता की हदीस है कि अगर रोज़े में कोई तुमसे झगड़ा करे तो क्या कह दो? इन्नी साइमुन, इन्नी साइमुन, यानी मैं रोज़े से हूँ। तो बहरहाल हज़रत मरियम की ये बहुत बड़ी आजमाइश थी और ये इसमें पूरा उतरी। इसके बाद आयत 27 से 36 में माँ की गोद में हज़रत ईसा की मौजज़ाना गुफ्तगू का तस्करा है। जब बेबी पैदा हो गया, फ़तत बिही कौमहा, पस ले आई उसको अपनी कौम की तरफ, बच्चे को उठाया हुआ था, कहने लगे है मरियम ये क्या किया? यानी वही कीलो काल जो उस वक़्त की बातें हैं। कौम तो परेशान हो गई और फिर ताने भी दे रही है, या उख्ता हारून माँ का ना अबू कि इमरा सऊन, ए हारून की बहन तेरा तो बाप भी कोई बुरा ना था, व माँ का ना तुम मुखी बगी, और तेरी माँ भी कोई बदकार खातून नहीं थी। फाशारती लई, मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि इससे पूछ लो। कालू कई फन उकल्ली मुमन का नफिल महदी सबिया, कहने लगे हम कैसे बात करें, हमसे कैसे बात करेगा वो बच्चा जब भी गोद में। और इसके बाद आयत 30 से ऑनवर्ड नोट कर लीजिए, ये है वो कलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में किया। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, कहने लगे मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। आज क्या कहते हैं ईसाई? नाउज़ुबिल्लाह, ईसा अल्लाह है, जीसस गॉड, कभी क्या कहते हैं सन ऑफ गॉड। आप इसको अगर सिर्फ आयतों के साथ दिखा देना किसी ऐसे शख्स को जिस तक अभी तक हक नहीं पहुंचा, क्या पता मान जाए। अब्द थे वो, सन नहीं थे। और अंबिया कराम की सबसे प्यारी खूबी जो उनको लगती है वो अब्दियत की लगती थी। यहाँ ये बात है, फिर साथ ही किताब की बात कर दी, नबी भी हूँ और मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं मुबारक हूँ, बरकतों वाला हूँ, और मुझे उसने नमाज की और ज़कात की हुक्म दिया जब तक कि मैं जीऊँ। क्या आज क्रिश्चियनिटी में नमाज है, ज़कात है, चेंज हो गई? यानी हज़रत ईसा जिस नमाज ज़कात की बात कर रहे हैं कि ये हर दौर में अपने अपने मुख्तलिफ रंग में जारी रही थी। फिर वबर्रम भी वालिदती, यहाँ भी नोट कीजिए वालिदैन नहीं का, ये देखिए इशारे होते हैं जिससे साबित होता है कि हज़रत ईसा का बाप नहीं था। क्योंकि आज कुछ फ़िरकों ने हज़रत ईसा की नाउज़ुबिल्ला पैदाइश में यूसुफ नज्जार को शामिल कर दिया और हज़रत मरियम पे तोहमत लगाते हैं कि वो जी वहाँ के अटैकर थे और इस तरह से उनके साथ उनके ताल्लुकात थे। ये सब अल्लाह के कानून को पामाल करने वाली बातें हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि मुझे उसने वलम या जलनी जब्बारन शकिया, कि मेरे पे कोई रहम ना खाए, मैं कोई बदबخت नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई जबर नहीं हुआ। वस्सलामुन अलैया, और मुझ पे सलामती है उस दिन जब मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊँगा। तो ये सब करके अल्लाह कहते हैं ज़ालिक ईसा इब्नु मरियम, ये है ईसा इब्ने मरियम, कौल अल हक, ये है सच्ची बात, अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, जिसमें ये शक करते थे। क्या पता चला कि हज़रत ईसा की असल ये थी। लेकिन हज़रत ईसा के बारे में इख्तलाफ लोगों ने किया और उनका इंजाम क्या हुआ, आयत 37 से 40 है, फ़ख्तलफ अल अहज़ाब। फिर आने वाले अदवार में आज तक बल्कि क़्यामत तक लोगों ने हज़रत ईसा के बारे में बहुत ही गलत से गलत बातें कर दी। कोई बात नहीं, एक क़्यामत का दिन आएगा, यौमी मशहद, आप देखिए मे मशहद यौम नज़ीम, वो बड़ा दिन होगा, उस दिन लग पता जाएगा हमने क्या बोला। फिर आप देखिए कि आयत 39 में क़्यामत का एक नाम आप नोट करना चाहें तो करिए, वानज़िर हुम यौम अल हसरा, क़्यामत का दिन हसरतों का दिन होगा, इस खुदी अलम, जब सारे काम पूरे हो जाएंगे। वहुम फ़ी गफला, और वो गफलत में थे, वहुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाते थे, इन्ना नहनु नरिसुल अर्द व मन अलैहा, बेशक हम ही वारिस होंगे हर उस चीज़ के जो ज़मीन में है और जो इसके ऊपर, और सब को हमारी ही तरफ लौट कर आना है। क्या पता चला कि उस हसरत के दिन के आने से पहले अपने आप को अल्लाह की रज़ा वाला बना लें ताकि अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि सूरत मरियम ऐसे जैसे एल्बम खुल रहे हैं, एक पेज खोला, फिर ये बच्चा है, ये इसकी फैमिली है, ये है, ये इनकी शादी हुई थी, ऐसे हुआ था, हुआ था। तो अब इनके बाद अगला एल्बम का पेज हज़रत इब्राहिम पे खुलता है और इसमें मुख्तलिफ अंबिया की बड़ी कॉम्पैक्ट किस्म की, बड़ी मुख्तसर पेराए में बयान की गई कहानी है।